हरे कृष्ण श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद सातवां अध्याय श्लोक संख्या 22 और 23। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं दराति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाया मुदीरये। नष्टप्रायेषु पत्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेशगोपिकाकान्ता श्रीराधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चनं गौरङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसूतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। पहला स्कंद सातवां अध्याय श्लोक संख्या 22। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गो से संस्कृते कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानाना अपवर्गोसि संस्कृते कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानाना अपवर्गोसि संस्कृते कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानाना अपवर्गोसि संस्कृते कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानाना अपवर्गोसि संस्कृते। शब्दों का अर्थ। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, कृष्ण हे कृष्ण भगवान, कृष्ण हे भगवान कृष्ण, महाबाहो सर्वशक्तिमान, भक्तानाम भक्तों के अभयकर अर्थात भय को भगाने वाले, त्वम एक, तुम एक मात्र, दह्यमानाना अर्थात कष्ट उठाने वालों के अपवर्ग मोक्ष पथ, असि हो संस्कृते अर्थात भौतिक कष्टों के बीच में। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे कि अर्जुन भगवान की दिव्य गुणों से अवगत था, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे दोनों साथ साथ उपस्थित थे, तभी इसका अनुभव उसे हो चुका था, अतएव कृष्ण के विषय में अर्जुन का कथन प्रामाणिक है। कृष्ण सर्वशक्तिमान है और भक्तों की निर्भयता के कारण स्वरूप है। भगवत भक्त सदैव निर्भय रहता है, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं। यह भौतिक संसार जंगल में प्रज्वलित अग्नि के समान है, जिसका शमन भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव है। गुरु भगवान की कृपा का प्रतिनिधि करता है, अतएव संसार की ज्वालाओं में जलता हुआ व्यक्ति स्वरूप सिद्ध गुरु के पारदर्शी माध्यम से ही भगवान की कृपा रूपी वर्षा प्राप्त कर सकता है। गुरु अपनी वाणी के द्वारा पीड़ित व्यक्तियों के हृदयों में प्रवेश करके दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकता है, जिससे संसार की अग्नि बुझ सकती है। श्री प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति गिरां, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। अत्यंत सुंदर दृष्टांत ही जो अभी हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, कुरुक्षेत्र के मैदान में समाप्त होने के बाद, युद्ध जब समाप्त हो गया उसके बाद, जब दुर्योधन के मन को प्रसन्न करने के लिए अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पांचों पुत्रों के सिर उसको भेंट किए, तो वो प्रसन्न नहीं हुआ, लेकिन अपने पुत्रों की हत्या के बाद अर्जुन बहुत क्रोधित हुए और वो भगवान को लेकर अपना गांडीव धनुष लेकर भगवान के साथ अश्वत्थामा के पीछे भागने लगे। और अश्वत्थामा को ने जब देखा कि अर्जुन मेरे पीछे आ रहा है और इस समय मेरे घोड़े भी थक गए हैं, अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है सिवाय ब्रह्मास्त्र चलाने के, तो अपनी सुरक्षा के लिए अश्वत्थामा ने उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जिसे लौटाना वो जानते ही नहीं थे। लेकिन फिर भी क्योंकि उनकी जीवन प्राण जो है वो संकट में थे, तो उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। वो सोच रहा था दुनिया मरे तो मरे, कम से कम मैं तो बचाऊंगा। तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जिसे देखकर अर्जुन बहुत भयभीत हो गए, क्योंकि अर्जुन ने इस प्रकार की अग्नि, इतनी भयानक अग्नि इससे पहले कभी नहीं देखी। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये क्या है, और इतना भयानक उस समय दृश्य था, ऐसा लग रहा था जैसे बस प्रलय आने वाली है। और एक बुद्धिमान व्यक्ति संकट के समय जो करता है वही अर्जुन ने किया। क्या? प्राणापदम अभिप्रेक्ष विष्णुम जिष्णुवाच। जब उसने देखा कि मेरे प्राणों पर आपत्ति पहुंच चुकी है, मेरे प्राण संकट में है, ये ब्रह्मास्त्र मेरे प्राण ले लेगा, तो विष्णु जिष्णुवाच। उस जिष्णु ने, जो कि सदैव विजयी होता है, उसने विष्णु जो कि संसार के पालक हैं उनसे ऐसा कहा। कैसा कहा? कृष्ण कृष्ण महाबाहो, कृष्ण कृष्ण। अर्थात अर्जुन इतना व्याकुल था कि उनके शब्दों से उसकी व्याकुलता दिख रही है। दो बार एक ही शब्द का या किसी के नाम का उच्चारण कर, इसे संस्कृत में वीप्सा कहते हैं। मतलब वीप्सा के कई अर्थ, जैसे दो दफा अगर किसी का नाम पुकारते हैं या किसी को पुकारते हैं, इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। अर्थात क्योंकि अर्जुन बहुत ज्यादा व्याकुल हो गया था इस ब्रह्मास्त्र को देखकर, संभ्रमित हो गया था, इसलिए वो मतलब कृष्ण के नाम को पुकारा, कृष्णा कृष्णा बचाओ बचाओ। मतलब इतना व्याकुल था कि वो, उसको समझ में नहीं आ रहा था, उसके मुंह से केवल उसे एकमात्र यही लग रहा था कि केवल कृष्ण बोलने से ही मेरी सुरक्षा हो सकती। मतलब जिस समय आपकी आपके प्राणों को संकट आए ना, उस समय एक कार्य आप ऐसा करते हो, सिर्फ एक ही कार्य करते हो जिसे आपको ऐसा लगता है कि इसी कार्य करने से ही मेरा कल्याण होगा। तो वो जोर जोर से कृष्ण को बुला रहे थे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर। और आचार्य गण तो यहाँ तक कहते हैं कि क्योंकि अर्जुन जानते थे कि कृष्ण का नाम जो है वो मुझे इस भयंकर स्थिति से बचा सकता है, क्योंकि कृष्ण का नाम बड़े बड़े भय से जीव की रक्षा कर सकता है। कृष्ण का नाम, इस बात की पुष्टि पहले की जा चुकी है जब पहले अध्याय का हम श्लोक नंबर 14 पढ़ा था, जिसमें बताया था शौनकादि ऋषियों ने, आपन्न संस्कृतिम गोराम यन्नाम विवशो ग्रहन ततः सद्यो विमुच्येत यद्धि भेति स्वयं भयं। कि संस्कृति में फंसे हुए, संस्कृति का मतलब होता है जन्म मृत्यु की अग्नि में जलने वाले जो जीव है, वो यदि यन्नाम विवशोगुण, यदि विवशता के आलम में, विवशता की अवस्था में यदि वो भगवान के पवित्र नाम को ग्रहण करते हैं, ततः सद्यो विमुच्येत। सद्यो का मतलब होता है तुरंत ही, समय नहीं लगता, भगवान का नाम मुख से उच्चारण हुआ और विमुच्येत, विमुच्येत मतलब मुक्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि यद्धि भेति स्वयं भयम्, स्वयं साक्षात भय भी भगवान के नाम से भयभीत होता है। यदि भगवान का नाम नहीं लिया जाए तो साक्षात भय, साक्षात यमराज भी डर जाता है, यमराज के दूत भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जब भगवान का नाम मुख से उच्चारण होता है तो फिर वही नाम जीव की रक्षा करता है। तो इसीलिए अर्जुन बार बार कह रहे हैं कृष्ण कृष्ण महाबाहो, केवल आप ही सर्वशक्तिमान हैं। और इसलिए भक्तानाम भयंकरम अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं। तो ऐसा लगता है अर्जुन कृष्ण पूछ सकते हैं कि चलो ठीक है, कृष्ण बोले कि अर्जुन मैं तो तुम्हारा साथी हूँ, तो तुमने तो मुझे साथी बनाया है, तो साथी का कर्तव्य निभाऊंगा ना, उसी तरह से तुम्हारे रथ को चलाऊंगा। तब अर्जुन कहते नहीं, आप मेरे साथी, चलो यहाँ पर भगवान को अर्जुन ने साथी तो बना लिया, लेकिन अब जब संकट की घड़ी आई है तो वास्तविकता बयान कर रहे हैं। ये अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, सबसे संसार के सबसे बड़े वीर हैं, सबसे बड़े धीर पुरुष हैं, निष्पाप अर्जुन जो गीता के अधिकारी हैं, और सबसे बड़ी बात कि जो जिनसे कृष्ण इतना स्नेह करते हैं, कृष्ण कितना प्रेम करते हैं अर्जुन से, वो आज कह रहे हैं भक्तानाम भयंकरम, केवल कि आप है ना भक्तों के भय को दूर करने वाले हैं, और दह्यमाना नाम यानी कि जो जल रहे हैं, जो लस रहे हैं, अपवर्गोसी संस्कृति, उनको जो संसार के पवर्ग में झुलस रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, जन्म मृत्यु की जलन से बचाने वाले आप ही हैं। तो अर्जुन कृष्ण सोचे कि हाँ ठीक है, मैं भी हूँ, और भी तो होंगे ना, अर्जुन को बोला आप मेरी शरण में आओ, अभी तो मैं तुम्हारा साथी बन। तब अर्जुन इस बात को क्लियर करके हुए कहते हैं कि त्वमेको, नहीं कृष्ण तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं है जो इस समय या संसार में झुलसते हुए प्राणियों की रक्षा कर सके, और कोई नहीं है, त्वम एकम, बस अकेले, और आप और कोई नहीं, आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है जो संसारी मनुष्यों को इस संस्कृति से बचा सके, इसी में आपकी शरण में। आजकल जीव जो है वो इस त्वमेको शब्द को नहीं जानता, ये वास्तव में बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है। अर्जुन बता रहा है कि कृष्ण के अतिरिक्त और कोई भी नहीं हो सकता जो संसार में झुलसते हुए प्राणियों की रक्षा कर सके, इसलिए अर्जुन कह रहे हैं त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोसी संस्कृति, भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे हुए सारे लोग आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। आप एकमात्र आश्रय हो। जीवों को यदि आश्रय मिल सकता है भौतिक कष्टों से, यदि कभी कोई जीव छूट सकता है, तो उसका एकमात्र आप ही आश्रय बन सकते हो। यही बात बताते हैं सुदामा की पत्नी, सुदामा को जब जाने के लिए बोल रही थी, और कहती है विपत्त में साथ साथी एक देवकी को लाल, कि जब जीव की संकट में जीव आता है, बाकी लोग सब संपत्ति में साथ देते हैं। इस संसार में हम देखें, यदि हम समृद्ध होंगे, सुरक्षित होंगे, तो सब हमारे साथ साथ आएंगे, लेकिन जब हम किसी तरह से विपत्ति में आ जाएंगे तो अपने भी साथ छोड़ के चले जाते हैं। तो और अर्जुन को तो इस बात का पूरा पूरा अनुभव था। अर्जुन के पास कुछ नहीं था, राज छिन गया, सब कुछ, मान छिन गया, मर्यादा छिन गई, और उस समय भी महाभारत की युद्ध में भगवान ने अर्जुन का साथ दिया, और अर्जुन जानते थे, वास्तव में अर्जुन का अनुभव था, और ये वास्तविकता भी तो है कि केवल कृष्ण ही जीव की संरक्षा कर सकते हैं, केवल कृष्ण ही जीव को संरक्षा प्रदान कर सकते हैं इस संसार से। इसीलिए तो वो स्वयं कहते हैं, अनाउंस करते हैं कि आप सब मेरी शरण में आ जाओ। भगवान कहते हैं 9.22 में, अनन्या सिंतयंतो माम ये जना परि उपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं तुम्हारे योग और क्षेम को वहन करूंगा। भगवान उसको आश्वासन देते हैं कि अगर योग का मतलब होता है जो तुम्हारे पास नहीं है वो मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, और जो तुम्हारे पास है शेम का मतलब है मैं उसकी रक्षा करूंगा, और इनके अतिरिक्त और कौन है जो ऐसा कह सकता है, यानी भगवान के अतिरिक्त और कौन है इस संसार में जो ये कह सकता है कि जितने भी लोग हैं उन सबको, अगर जैसे अगर यहाँ पर ये प्रश्न किया जाए कि यदि सब लोग भजन करना शुरू कर दें, भगवान की भक्ति करना शुरू कर दें, तो क्या भगवान सबको प्रोवाइड करेंगे जो उन्हें चाहिए और सबका शेम करेंगे जो उनके पास है? तो वास्तव में ऐसा कर सकते हैं, वो समर्थ हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, सबको योगक्षेम वहन कर सकते हैं। जो भजन करेगा उसका तो कहना ही क्या, अरे भगवान तो बिना भजन करने के ही सब कुछ, सब किसी को हर वो वस्तु प्रदान कर रहे हैं जो उनकी आवश्यकता है। हवा, पानी, पृथ्वी, सूर्य प्रकाश, ये सब कौन प्रदान कर रहा है? कृष्ण ही तो प्रदान कर रहा है। ये भौतिक प्रकृति के अंदर जीव जो 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 वस्तुओं जीने के लिए, जब तक उसको ये जीवन मिला है जीने के लिए, उसको जो जो नेसेसरी है वो सब कृष्ण ही तो प्रदान कर रहे हैं। तो कृष्ण यदि कह रहे हैं कि मैं, अगर तुम मेरा भजन करोगे तो मैं प्रोवाइड करूंगा, तो जाहिर सी बात है जो कृष्ण की शरण में आएगा, कृष्ण को का भजन करेगा, तो उसको स्पेशल तो मिलेगा। तो अर्जुन भी कह रहे हैं कि आज मैं तुम्हारी शरण, वास्तव में इस संसार में लोग इस बात को समझने का प्रयास नहीं करते कि केवल कृष्ण ही योगक्षेम का वाहन कर सकते हैं। और कौन है जो ये बोल सकता है कि तुम्हारी सारी जरूरतों को मैं पूरा करूंगा, मैं तुम्हें सूर्य प्रकाश दूंगा, मैं तुम्हें हवा दूंगा, मैं तुम्हें जल दूंगा, मैं तुम्हें पृथ्वी प्रदान करूंगा रहने के लिए? कुछ किसी का है ही नहीं तो वो किसी को कैसे दे सकता है? भगवान कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, ये मेरी शक्तियां हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो कुछ भी संसार में दिख रहा है वो मेरा है, तो मैंने तुम्हें प्रोवाइड किया है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति मन में भिन्ना प्रकृति अष्टदा, ये सब मेरी प्रकृति है। और भगवान के अतिरिक्त और कौन कह सकता है कि मैं तुम्हें ये सब प्रदान करूं? अगर कोई है जो बोले कि मैं तुम्हें इंश्योरेंस प्रदान, अरे लाइफ इंश्योरेंस जो प्रदान करते ना, वो भी कहते हैं योगक्षेम वहामि हम, मैं आपको, हम आपको वो सब प्रदान करेंगे जो आपकी जरूरत होगी और जो 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 आपके पास है उसकी सुरक्षा करेंगे। वास्तव में लाइफ इंश्योरेंस का क्या मतलब होना चाहिए? कि लाइफ आपकी सिक्योर हो, यानी आपकी लाइफ को बचाया जाएगा, आपको मरने नहीं दिया जाएगा। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि मैं आपको सुरक्षा प्रदान करूंगा, योगक्षेम का वहन मैं करूंगा। और यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस वाले क्या बोलते हैं, शायद ऐसे हैं कुछ राधा गोविंद महाराज से बता रहे थे कि उनके जो ऑफिस है उसके बाहर लिखा होता है योगक्षेम वहामि हम, हम योग और क्षेम का वहन करेंगे। वास्तव में उसमें क्या किया जाता है लाइफ इंश्योरेंस में, कि जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के पश्चात आपके परिवार वालों को कुछ धन दिया जाता है। ये कैसा लाइफ इंश्योरेंस हुआ? हम देख रहे हैं प्रकट ऐसा ही होता है ना, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस का क्या मतलब होना चाहिए? कि आपकी लाइफ को सिक्योर किया जाएगा। लेकिन भगवान यहाँ पर सिक्योर का क्या मतलब होता है, कि आपको पुनः वापिस से इस दुखमयी अपवर्ग में नहीं आना पड़ेगा। त्वमेको दह्यमाना अपवर्गोसि संस्कृते, आप अपवर्ग से छुड़ाकर, इस संसार से, संस्कृति से छुड़ाकर अपवर्ग में लेकर जाते हो, जीव को मोक्ष प्रदान करते हो, केवल आप ही ऐसा कर सकते हो। तो अर्जुन यहाँ पर यह बात को क्लियर कर रहा है, त्वमेको दह्यमाना, केवल आप ही एकमात्र ऐसे हैं जो जीव का कल्याण कर सकते हैं, जो जीव को इस संस्कृति से बचा सकते हैं। एक कम का मतलब होता है कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं। लेकिन यदि आज का जीव किसी को भी बोल देता है कि भाई ये हमारा संरक्षक है, ये कलयुग द्वापर में ये था, त्रेता में ये था, और कलयुग का संरक्षण अभी इसने संभाला है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम किसी कुत्ते के गले में ये एक पर्ची लिख कर लटका दें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है और ये अभी चलाएगा, तो वो कुत्ता है तो क्या करेगा, जाहिर सी बात है सूंघेगा, गंदगी खाएगा, ये करेगा। तो इस तरह से हम किसी को भी भगवान की पदवी नहीं दे सकते। बहुत इजी शब्द कर दिया है भगवान को, कि भगवान किसी को भी बना दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। भगवान बनाया नहीं जाता है, भगवान स्वतः से होता है। इसी चीज को बताएंगे आगे अर्जुन, प्रमादयः पुरुषार्थ। लेकिन यहाँ पर हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कृष्ण के अतिरिक्त तो और कोई नहीं है जो शुभ चिंतक हो सके, और भक्तों के तो स्पेशली शुभ चिंतक है। जब भगवान अर्जुन के ये युधिष्ठिर के दूत बनकर गए थे, शांति दूत बनकर हस्तिनापुर में गए थे, तब उन्होंने उस बड़ी सभा में ये घोषणा की थी कि जो अर्जुन का मित्र है वो मेरा मित्र है, और जो अर्जुन का शत्रु है वो मेरा शत्रु है। वास्तव में भक्तों, बड़ी सभा में ऐसा बोलना बड़ी विपत्ति की बात है, लेकिन फिर भी। और वो जगह क्या थी, अर्जुन दुर्योधन जब भगवान आ रहे थे हस्तिनापुर से, हस्तिनापुर आ रहे थे, तब जगह जगह पर दुर्योधन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी कृष्ण के रहने के लिए, एकदम अच्छे अच्छे रेस्ट रूम बनाए थे। रेस्ट रूम तो विदेशों में शौचालय को बोलते हैं, लेकिन अच्छे अच्छे बहुत सारे उनको विश्राम के लिए बहुत अच्छे अच्छे जगह बनाई थी रास्ते में, ताकि कृष्ण को कोई कष्ट ना हो आने में। उन्हें पता था कि द्वारिका दीश आ रहे हैं, द्वारिका दीश आ रहे हैं। और जब वो आए भी ना, जब हस्तिनापुर में पहुंचे, तभी भी उनका बहुत ही भव्य स्वागत किया, और अंत में उनके लिए दुशासन का जो रोम था ना वो खाली करवाया, क्योंकि दुशासन का जो भवन था वो इतना सुंदर था, दुर्योधन के बाद पहले नंबर पे सुंदर भवन अगर किसी का था तो दुशासन का। तो दुर्योधन इतना अभिमानी था कि अपने भवन में नहीं रखना चाहता था भगवान को, लेकिन फिर भी दुशासन का भवन खाली करवाया, और बहुत बहुत स्वागत की तैयारियां की कृष्ण के लिए, 56 भोजन बनवाए, और ये कहा कि इसके लिए बहुत बहुत स्पेशली जो खान खाद्य पदार्थ है ना, उसमें बहुत उसने अच्छे तरीके से व्यवस्था की थी, क्योंकि जानते थे कृष्ण चटोर है, खाते हैं बहुत, मक्खन चोरी करके खाते हैं, और भक्त भी बहुत बहुत भोग लगाते हैं, तो खाने के शौकीन है बहुत, तो इनको खा कर इनका मन बदल दूंगा और अपनी ओर कर लूंगा इसको। तो कृष्णा ने आते ही कह दिया कि मैं तो युधिष्ठिर का दूत हूँ, मैं तो युधिष्ठिर का शांति दूत बन के आया हूँ, मैं सेवक हूँ, और है ना अर्जुन का मैं दोस्त हूँ। तब भी दुर्योधन ने कृष्ण को कहा कि आप जो कहोगे वो हम आपकी बात मानेंगे, लेकिन आते ही आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, हम आपको द्वारिका दीश की तरह आदर देना चाहते हैं, कि आप द्वारिका दीश हो, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, आप ऐसे आते ही बोल दिया कि हम उसका सेवक हों, उसका दूत हों, ये छी ऐसे क्यों बोल रहे हो, आप सीधा बोलो ना कि मैं द्वारिका दीश हूँ, आप अपना प्रस्ताव रखो, हम आपकी बात मानेंगे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ कह दिया कि नहीं, मैं इस समय तो शांति दूत बन के आया हूँ, और मैं उन पांडवों का प्रिय हूँ, मैं उनका प्रिय करना चाहता हूँ, और अगर आप लोग, तो दुर्योधन ने कहा चलो ठीक है, आप बात में मंत्रणा करते हैं, अभी तो आप प्रसाद खाइए, बहुत अच्छा भोजन बनाया आपके लिए। तब कृष्ण ने कहा, देखो दुर्योधन, भोजन केवल दो अवस्थाओं में किया जाता है, एक जब आपको बहुत भूख लगी हो, और दूसरा जब खिलाने वाला आपका स्नेही हो, आपका प्रेमी हो। मुझे, हमारे दरमियान ये दोनों बातें नहीं है, ना ही मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, ना मैं भूखा हूं, और ना ही तुम मुझसे स्नेह करते हो। वास्तव में अभी मैं युधिष्ठिर का दूत बन के आया हूँ, तुम पहले मेरी बात सुनो, अगर आप मेरी बात को स्वीकार करोगे तो मैं आपके पास भोजन खाऊंगा, अन्यथा मैं आपके साथ नहीं खाऊंगा। तब फिर है ना, दुर्योधन ने जब भगवान की ये बात सुनी तो बहुत ज्यादा मतलब क्रोधित हो गया, क्योंकि अब इतना उसके लिए किया था, वो पिघल ही नहीं रहा था, दाल गल नहीं रही थी, तो उसने सोचा अभी इसको मैं अरेस्ट कर दूंगा, इसको कैद कर दूंगा, क्योंकि अगर ये बाहर रहेगा तो फिर युद्ध में भी बहुत ज्यादा ये डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। तो इसलिए सबको, अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि बंदी बना दो इस ग्वाले को। अभी कृष्ण है सामने और वो बंदी बनाना चाहता है, वो बन गए, विश्व रूप अपना दिखाया और कहा लेकर आओ, जितनी बड़ी रस्सी लेकर आते हो लेकर आ सकते हो, लेकर आओ मुझे बंदी बनाने के लिए। तुम मुझे बंदी बनाओगे, शांति दूत को बंदी बनाओगे, बना सकते हो तो बनाओ बंदी, जो तुम कर सकते हो करो। तब सबने देखा उस समय भगवान के विशाल स्वरूप को, लेकिन जब इतना देखने के बावजूद भी जो मूढ़ होते ना, बेवकूफ होते, जिनके पास बुद्धि नहीं होती है ना, भगवान बताते हैं भगवद गीता में, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया प्रहृत ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, जो दुष्ट है, जो जिनकी प्रवृत्ति दुष्ट है, जो मूढ़ है, जिनके पास ब्रेन नहीं है, अक्कल नहीं है, बुद्धि नहीं है, जो बिल्कुल बुद्धू है, मूढ़ है, वो नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, जो नर अधम है, नरों में, मनुष्यों में जो सबसे ज्यादा गिरे हुए नीच व्यक्ति हैं, मायया प्रहृत ज्ञाना, वो वास्तव में ज्ञानमयी है क्योंकि मेरा अंश है, लेकिन माया ने उनके ज्ञान को हरण कर दिया, किडनैप कर दिया है उनके ज्ञान को। माया प्रहृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता, इसलिए वो असुर भाव में, असुरों के भाव को आश्रय किए हुए हैं, इसलिए वो मेरी शरण में नहीं आते। वास्तव में अर्जुन का ये जो भगवान की शरण में आया, अर्जुन कहता है कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकरम, कि आप महाबाहो सर्वशक्तिमान हो, और वास्तव में यदि कोई बुद्धिमान है तो वो आपके भक्त ही है, क्योंकि वो आपकी शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि त्वमेकं दह्यमानां, तुम्हारे अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। अपवर्गोसि संस्कृते, जो जन्म मरण की जलन से जीव को बचा सके। इसी वास्तव में भक्तों, हमें इसी बात को समझाना है और इसी बात को समझना है कि कृष्ण के अतिरिक्त और कोई आश्रय नहीं है जो संकट में हमारी रक्षा कर सके। और अर्जुन उसी बुद्धिमता का यहाँ पर प्रयोग करते हुए भगवान की शरण में गए हैं। और आगे कहते हैं, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, जैसे अगर कृष्ण कहें कि अर्जुन मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि केवल मैं ही तुम्हें इस दुखमय स्थिति से दूर कर सकूं। केवल जैसे अर्जुन ने कहा है, त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोसि संस्कृते, केवल आप ही भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे हुए सारे लोगों को आप मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, अपवर्गो संस्कृते। तो अर्जुन, कृष्ण यदि पूछे कि केवल मैं ही क्यों कर सकता हूँ, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो मेरे बारे में, तो अर्जुन उसका उत्तर देते हुए आगे कहते हैं कि वह श्लोक को मेरे साथ रिसाइट कीजिए। अर्जुन कहते हैं, त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृते परा मायां युदस्य चिच्छत्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृते परा मायां युदस्य चिच्छत्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृति परः मायां च मायां युदस्य चित्सत्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृति परः मायां युदस्य चित्सत्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतिः परम् मायां युदस्य चिच्छत्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। शब्दों का अर्थ, त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात्, त्वम आद्य यानी आप आदि, पुरुष अर्थात भोक्ता पुरुष हैं, साक्षात प्रत्यक्ष रूप से ईश्वरः नियंता प्रकृति पर, प्रकृति के परे हैं, प्रकृति से दिव्य हैं। मायाम युद्धस्य चिच्छत्ता, माया मतलब माया भौतिक शक्ति को युद्धस्य यानी दूर भगाकर, चित शक्तिया अंतरंगा शक्ति के बल पर कैवल्य स्थित आत्मनि, कैवल्य यानी शाश्वत ज्ञान तथा आनंद में स्थित होते हैं आत्मनि, अपनी अपने आप में। अनुवाद, आप आदि भगवान हैं जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है, आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है वह अविद्या की चुंगल से छूट सकता है। कृष्ण सूर्य के तुल्य हैं और माया या भौतिक जगत अंधकार के तुल्य है। जहां जहां सूर्य का प्रकाश जाता है वहां वहां से अंधकार या अज्ञान तुरंत दूर हो जाता है। यहाँ पर अज्ञान के संसार से निकलने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सुझाया गया है। यहाँ पर भगवान को आदि पुरुष कहा गया है। उन्हीं से अन्य सारे पुरुषों का विस्तार होता है। सर्वव्यापी भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश या विस्तार है। भगवान अतिशक्तियों समेत ईश्वर तथा जीव के असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण मूल आदि भगवान हैं, जिनसे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है। इस दृश्य जगत में भगवान का जो सर्वव्यापी रूप दिखलाई पड़ता है वह भगवान की आंशिक अभिव्यक्ति है। अतः भगवान में परमात्मा का समावेश रहता है। वे पूर्ण ब्रह्म हैं। उन्हें भौतिक जगत के कर्मों तथा फलों से कोई सरोकार नहीं रहता, क्योंकि वे भौतिक सृष्टि से बहुत ऊपर हैं। अंधकार सूर्य का विकृत अर्थात उल्टा रूप है। अतएव अंधकार का अस्तित्व सूर्य के अस्तित्व पर निर्भर रहता है। लेकिन सूर्य में अंधकार का नामो निशान नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य केवल प्रकाश से ओतप्रोत होता है, उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत से परे रहकर आनंद से ओतप्रोत है। वे ना केवल आनंद से ओतप्रोत है अपितु दिव्य विविधता से भी ओतप्रोत है। दिव्यता अचल ना रहकर सचल विविधता से युक्त है। वे भौतिक प्रकृति से भिन्न है, क्योंकि प्रकृति तीन गुणों के कारण जटिल है। वे परम या प्रमुख है, अतः वे पूर्ण है। उनकी अनेक शक्तियां हैं और वे उन्हीं के द्वारा संसार का सृजन पालन तथा संहार करते हैं। लेकिन उनके अपने धाम में सब कुछ नित्य तथा पूर्ण है। यह संसार केवल शक्तियों या शक्तिशाली प्रतिनिधियों द्वारा संचालित ना होकर सर्वशक्तिमान की समस्त शक्तियों द्वारा संचालित होता है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालम् पङ्गुं लङ्घयति किरां यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। तो अर्जुन भगवान को जब कहते हैं त्वमेकं, केवल आप एकमात्र आप ही जीवों को इस भयानक कष्टों बड़े जीवन से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, तो जब भगवान ने पूछा ऐसा क्यों, तो आगे भगवान अर्जुन भगवान को बता रहे हैं, त्वम आद्य पुरुषम साक्षात ईश्वर प्रकृति पर। त्वम आद्य पुरुष, कृष्ण आप आदि पुरुष हो, पूर्ण पुरुष हो, सबको जन्म देने वाले हो, सबके आदि हो, लेकिन आपका कोई आदि नहीं है इस संसार में। हर एक जीव प्रकृति के अधीन है, प्रकृति के गुणों के अधीन है और उसी गुणों के द्वारा प्रभावित होकर वो कार्य कर रहा है। लेकिन अर्जुन भगवान को बता रहे हैं ईश्वर प्रकृति परे, आप ईश्वर हो इस संसार में हर एक वस्तु का और प्रकृति परे, इस प्रकृति के गुणों से बिल्कुल अलग हो आप। दिव्य हो, आप इस प्रकृति के अंदर में नहीं हो। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है, आदि होने से क्या होता है? आदि का मतलब ये नहीं है कि आप पहले प्रकट होने वाले हो, नहीं। पहले भले ही ब्रह्मा जी कहते हैं कि ईश्वर परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद, कि भगवान जो है वो परम ईश्वर, यहाँ पर भी ईश्वर कहा गया है कि साक्षात ईश्वर है, कि आप ईश्वर हो। लेकिन वास्तव में ईश्वर तो और भी हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कि उनके अपने धाम में सब कुछ नित्य है, यह संसार केवल शक्तियों या शक्तिशाली प्रतिनिधियों द्वारा संचालित ना होकर सर्वशक्तिमान की समस्त शक्तियों द्वारा संचालित होता है। कि इस संसार में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ये जो भगवान की शक्तियां हैं उन्हीं के द्वारा संचालित हो रहा है संसार। ब्रह्मा जी उत्पत्ति कर रहे हैं और शंकर उनका प्रलय कर रहे हैं, विष्णु पालन कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ब्रह्मा जी बताते हैं कि सर्व कारण कारण हम नहीं है, ईश्वर परम कृष्ण, हम भले ईश्वर हैं लेकिन वास्तव में परम ईश्वर कृष्ण है और अनादि आदि गोविंद, उनका कोई आदि नहीं है, वो हमसे पहले थे। कोई कोई लोग ब्रह्मा जी को आदि पुरुष कहते हैं, परंतु ब्रह्मा जी इस बात की पुष्टि करते हैं कि मैं आदि नहीं हूँ, वो अनादि आदि, मैं अगर आदि हूँ तो मेरा आदि कौन है? कृष्ण है, मैं कृष्ण से आया हूँ, लेकिन वो किसी से आते नहीं है, वो स्वयं प्रकट होते हैं, वो साक्षात भगवान है, वो परम ईश्वर है। तो यहाँ पर आदि का मतलब केवल प्रकट होना नहीं है, बल्कि आदि का मतलब होता है समस्त कारणों का कारण, कि आप पहले प्रकट हुए और बाकी जो कुछ भी प्रकट हुआ है उसके आप कारण है। और ये संपूर्ण प्रकृति आपके इशारे पर चल रही है। जैसे केवल यदि कोई आदि होता है, मतलब पहले उत्पन्न होता है, तो उससे कोई लाभ नहीं होता। जैसे अगर कोई ट्रेन चल रही है और उस ट्रेन में कुछ व्यक्ति 80 साल के हैं, कुछ 90 साल के हैं, बहुत बूढ़े बूढ़े व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि उसको चलाने वाला कोई 25 साल का लड़का हो। तो ऐसा नहीं है कि भगवान आदि है और पहले जन्म लेकर छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है भगवान इस प्रकृति को आपके अतिरिक्त और कोई चला ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर प्रकृति पर है, क्योंकि चलाएगा वो जो उससे ऊपर होगा ना। अभी किसी के अंडर में आप रहो तो उसको नहीं चला सकते हो, इसीलिए कहते हैं ईश्वर प्रकृति पर है, इस प्रकृति से आप बहुत ऊपर हो, आप समस्त कारणों के कारण हो और परम ईश्वर हो, आदि पुरुष हो, इसलिए मैं आपके शरण में आया हूँ। और आगे कहते हैं माया युदस्य चित शक्त्या, माया अर्थात भगवान की बहिरंगा शक्ति, युदस्य यानी दबा कर चित शक्त्या, चित शक्त्या मतलब भगवान की अंतरंगा शक्ति, यानी भगवान की अंतरंग, भगवान के को अर्जुन बता रहे हैं माया युदस्य चित शक्त्या, आपने अपनी अंतरंगा शक्ति से इस बहिरंगा शक्ति माया को दबा दिया है और आप इस बहुत भौतिक शक्ति जो माया है उससे बहुत परे हैं और आपसे वो बहुत डरती है माया, आपने उसको उस माया को अपने वश में किया। वास्तव में जीव और भगवान में यही फर्क है कि माया, जीव जो है वो माया के अधीन होता है और माया जो है वो भगवान के अधीन होती है। जीव सदैव माया के अधीन रहकर ही कार्य करता है, परंतु माया भगवान की आंख के इशारे के नीचे रहकर कार्य करती है। तो यही बात यहाँ पर अर्जुन भगवान को बता रहे हैं, माया युदस्य चित शक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। और यहाँ पर ही अत्यंत ही सुंदर शब्द यहाँ पर उच्चारण किया अर्जुन ने, कैवल्ये, कैवल्य का मतलब होता है निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित, यानी कि भगवान चाहे इस जगत में रहें या वैकुंठ लोक में, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कैवल्यम स्थित आत्मनि का मतलब होता है उनकी आत्मा जो है वो सदैव, वो अपनी आत्मा में चिन्मय ज्ञान में, चिन्मय आनंद में स्थित रहते हैं। जैसे हम इस संसार में हैं तो हम कैवल्य में स्थित नहीं हैं, क्योंकि हमारा शरीर ये भौतिक है और हार्ड मास का बना हुआ शरीर है। वास्तव में आत्मा जो है वो भगवान का अंश होने के कारण वो भी चिन्मय है, आनंदमय है, ज्ञानमय है, लेकिन वो उसमें स्थित नहीं है, क्योंकि वो इस भौतिक जगत में है। एक तो भौतिक जगत में है और दूसरा यह भौतिक शरीर में है, तो वो कैवल्य में स्थित नहीं है। जैसे ये भौतिक शरीर है वो भी क्षण क्षण में बदलता रहता है, कभी हम ना बच्चे होते हैं कौमार यौवनम जरा, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं। तो भले जीव भी चिन्मय है, परंतु रेरा कहाँ पर है? इस भौतिक जगत में, और भौतिक प्रकृति में रहते हुए इस भौतिक शरीर में जकड़ा, परंतु भगवान कैवल्य में है। जैसे सूर्य, सूर्य जहां पर भी जाता है वहां पर प्रकाश हो जाता है। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत ही सुंदर दृष्टांत देते हैं सूर्य का, कि अंधकार सूर्य का विकृत रूप है, उल्टा स्वरूप है। जहाँ सूर्य नहीं है वहां पर अंधकार डेफिनेटली होता है, अतएव अंधकार का अस्तित्व सूर्य के अस्तित्व पर निर्भर करता है। जैसे ही सूर्य आएगा अंधकार उसी क्षण दूर हो जाएगा। ऐसे नहीं कि हम जैसे सूर्य आए उस टाइम पर फिर हमें अंधकार को बोलना पड़ेगा कि देखो अब सूर्य आ गया आप चले जाओ। नहीं, सूर्य का आना मतलब अंधकार का सर्वनाश हो जाना। सूर्य के अंदर जहाँ सूर्य होगा अंधकार का नामो निशान नहीं। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश से ओतप्रोत होता है, उसी प्रकार भगवान भौतिक जगत से परे रहकर आनंद से ओतप्रोत है। जहाँ पर भगवान है, इसका मतलब जिस तरह सूर्य जहाँ पर है वहां पर प्रकाश होना स्वाभाविक है उसका। ऐसा नहीं है कि किसी टाइम पर कोई जगह ऐसी हो कि वहां पर सूर्य हो और थोड़ा सा प्रकाश ना हो। 1% भी जगह ऐसी नहीं होगी जहां पर सूर्य आ जाए और वहां पर प्रकाश ना हो। उसी तरह से भगवान जहां पर हो वहां पर सब कुछ चिन्मय होता है, सब कुछ आनंदमय होता है, सब कुछ ज्ञानमय होता है। जिस प्रकार सूर्य जब निकलता है तो ये नहीं सोचता मैं कहां जाके रहूंगा, वो अपना लोक लेकर आता है पूरा, है ना, पूरे लोक के साथ आता है, पूरी अपनी व्यवस्था के साथ। चाहे उसको कहीं पर भी जाके चमकना हो, उसके लिए उसको व्यवस्था नहीं करनी है पहले कि मैं वहां पर पहले कुछ ना अरेंजमेंट हो, पृथ्वी का ऐसा टुकड़ा हो या मैं जाके रहूंगा कहाँ। वो पूरा का पूरा चिन्मय आता है उस जगह पर। उसी प्रकार भगवान जब जहां पर जाते हैं, अवतार लेते हैं, तो भगवान भी अपने चाहे वो धाम में रहे या इस वैकुंठ जगत में, वो चिन्मय होते हैं, वो ज्ञानमय होते हैं, वो आनंदमय होते हैं, वो सर्वशक्तिमान होते हैं। कैवल्य स्थित आत्मनि, यानी कि ऐसा जैसे यहाँ पर कोई कोई लोग को कोई कोई भगवान बोल देते हैं और फिर वो हाड़ मांस के शरीर से बने हुए होते हैं, और फिर जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो कहीं पर उसके बाल रख दिए जाते हैं या फिर उनका वो बना दिया जाता है कि भाई हाँ ये मेरे भगवान। लेकिन नहीं, भगवान पूरे के पूरे, चाहे उनका शरीर हो चाहे उनकी आत्मा हो, वो पूरे के पूरे दिव्य होते हैं। इसे यहाँ पर लिखा गया कैवल्य स्थित आत्मनि, वो सदैव आत्मा में स्थित रहते हैं। वो उनको उनके अंदर कुछ भी भौतिक नहीं है, वो पूरे के पूरे चिन्मय है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस श्लोक में इस संसार से, इस संसार के कष्टों से बचने का सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया गया है। यहाँ पर भगवान को आदि पुरुष कहा गया है और जितने भी अन्य सारे पुरुषों का विस्तार होता है वो भगवान के अधीन है। प्रकृति जो है वो भगवान के अधीन है, और जिस प्रकार भगवान की शरण में शरण जो कोई ग्रहण कर देता है वो अवश्य ही अविद्या के संकल्प से छूट जाता है। ये निस्सृति संसार जो है उससे, संस्कृति से जो है उसको छूटने का एकमात्र तरीका है भगवान कृष्ण की शरण। केवल कृष्ण की शरण ग्रहण करके ही जीव जो है वो भौतिक कष्टों से, उसके चुंगल से छूट सकता है। क्योंकि कृष्ण, यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर लिखा, श्री कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, याहार कृष्ण ताहार नाही माया अधिकार। जहाँ कृष्ण है वहां पर माया का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ईश्वर प्रकृति परे, क्योंकि प्रकृति से, माया प्रकृति है और प्रकृति से कृष्ण बहुत परे हैं, तो जो परे है वहां पर प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं उठता। तो जिस प्रकार जहाँ सूर्य है वहां अंधकार नहीं हो सकता, इसी प्रकार जहाँ पर कृष्ण है यदि कोई कृष्ण की शरण ले लेता है तो माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो माया से हमेशा परे रहते हैं। और श्री कृष्ण भगवान अपना बहुत विस्तार करते हैं अलग अलग शक्तियों में, अंतरंगा शक्तियां, भगवान की बहिरंगा शक्तियां, बहुत सारी शक्तियों में, लेकिन श्री कृष्ण मूल आदि भगवान है जिनसे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है, प्रत्येक व्यक्ति उत्पन्न होता है, प्रत्येक पूरी माया पूरी प्रकृति जो है वो भगवान की शक्ति है। इस दृश्य जगत में भगवान का जो सर्वव्यापी रूप दिखलाई पड़ता है वह भगवान की आंशिक अभिव्यक्ति है। जो कोई भी संसार में हम दिख रहे हैं वो केवल भगवान की एक छोटा सा जरा, भगवान कहते हैं भगवत गीता में अत्यंत सुंदर 10.42 में भगवान कहते हैं यद्यत् विभूतिमत् सत्त्वम् श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजोंश संभवा। जो कुछ तुम देख रहे हो, जो कुछ देखने लायक, जो कुछ सुनने लायक, जो कुछ प्रेम करने लायक इस संसार में तुम्हें दिख रहा है वो तो मेरी अलौकिक तेज की एक छोटी सी सफुलिंग के मात्र है, एक छोटी सी चिंगारी के बराबर है। इस संसार में जो कुछ भी बड़े से बड़ी अभिव्यक्ति, बड़े से बड़ी रंगारंगी यदि तुम्हें दिख रही है तो वो मेरे तजरेदार तेज की एक छोटी सी चिड़ंग के बराबर है, एक छोटी सी चिंगारी के बराबर है। तो भगवान कहते हैं इससे अधिक मैं क्या बताऊं तुम्हें अर्जुन। तो अर्जुन क्योंकि ये बात समझ चुका है और जान चुका है, भगवद गीता सुन चुका है, इसलिए कहता है त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृति परे, कि तुमसे ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम इस प्रकृति से परे हो, भगवान तुम ईश्वर हो, इसीलिए माया युदस्य चित्शक्त, तुम अपनी अंतरंगा शक्ति से इस माया को दबा देते हो, कायवली स्थिति में आत्मनि और सदैव आत्मा में स्थित रहते हो, आपसे परे कोई नहीं है और केवल आप एकमात्र ऐसे हो। तो अमेको दहय मानानाम अपवर्गोसी संस्कृते, इस जीवन मरण के चक्कर में फंसने वाले जलते हुए दुखी जीवों का एकमात्र सहारा हो आप, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अर्जुन का ये अत्यंत ही सुंदर प्रार्थनाएं चलती रहेंगी और अश्वत्थामा का जो उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया है वो छाया रहेगा एक दो दिन तक, क्योंकि पांच श्लोक अभी तक हम पढ़ेंगे अर्जुन के। लेकिन फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जहाँ पर कृष्ण है वहाँ पर बड़े से बड़ा ब्रह्मास्त्र भी कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी साधना को अच्छा कर सकूं। हरे कृष्ण।